नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। पहले कुछ चुनावी खबरें। प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के भाषणों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी की शिकायतों पर चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। उसने आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर दोनों दलों से 29 अप्रैल तक जवाब मांगा है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने बीजेपी और कांग्रेस के पार्टी अध्यक्षों को नोटिस भेजा है। चुनाव आयोग ने जेपी नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे से 29 अप्रैल को सुबह 11 बजे तक जवाब देने के लिए कहा है। दो पन्नों के वक्तव्य में चुनाव आयोग ने कहा है कि स्टार प्रचारकों को गुणवत्ता बनाए रखनी चाहिए, जो कभी कभार प्रचार के जोश में असंतुलित हो जाती है। चुनाव आयोग ने स्टार प्रचारकों के लिए पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखकर उनसे मिलने का समय मांगा है। वो प्रधानमंत्री से मिलकर उनको कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में जानकारियां देना चाहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि प्रधानमंत्री को सलाहकार गलत जानकारियां दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मध्य प्रदेश के मुरैना में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी के लिए देश से बड़ा और कुछ भी नहीं है, जबकि कांग्रेस के लिए अपना परिवार ही सब कुछ है।
ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की देखरेख में कांग्रेस की चली तो यहां मध्य प्रदेश में जो हमारे कुशवाहा भाई बहन है, गुजर भाई बहन है, यादव भाई बहन है, गडरिया भाई बहन है, धाकड़ प्रजापति समाज हो, ऐसे सब समाज को जो आरक्षण मिलता है, कांग्रेस इन सभी ओबीसी जातियों से उनका हिस्सा छीनकर अपने चहेते वोट बैंक को मजबूत करने के लिए उनके चरणों में देने का मन बना करके बैठी है।
और आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विपक्षी दलों को जमकर आड़े हाथों लिया। आज
भारत के प्रति नफरत की भावना के साथ खड़े हुए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन से जुड़े हुए वे सभी लोग भी हैं जिनका इतिहास देश के खिलाफ गद्दारी करने का रहा है, जिनका अतीत देश के अंदर जाति, क्षेत्र और भाषा के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का रहा है, और जिनको जब भी सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ उन्होंने देश के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों के हकों पर डकैती डालने के साथ ही गरीबों के हकों पर भी डकैती डालने का कुत्सित प्रयास किया है।
और कन्नौज की खोई हुई सीट पुनः हासिल करने के लिए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को आखिरकार वो मैदान में उतरे हैं। उन्होंने कन्नौज से, उत्तर प्रदेश के कन्नौज से पर्चा दाखिल किया। हालांकि पहले माना जा रहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। सपा ने यहां से तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया था। तेज प्रताप अखिलेश के भतीजे हैं। स्थानीय संगठन ने अखिलेश यादव से मिलकर स्पष्ट कर दिया था कि तेज प्रताप के लड़ने पर उतना समर्थन नहीं मिल पाएगा जितना अखिलेश यादव को बतौर प्रत्याशी में मिल सकता है। नामांकन की आखिरी तारीख से ठीक पहले सपा ने उम्मीदवार बदला है और अखिलेश यादव को उम्मीदवार बनाया है। आज ही बीजेपी उम्मीदवार और मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक ने पर्चा भरा। पिछली बार सुब्रत पाठक ने इस सीट पर डिंपल यादव को पराजित किया था। और उनसे बात की है, अखिलेश यादव से बात की हमारे सहयोगी रणवीर ने।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस बार लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी हैं। मेरे साथ अखिलेश जी हैं। अखिलेश जी, आप दो साल पहले विधानसभा चुनाव लड़े, सदन में जब बात आपकी मुख्यमंत्री की हो रही थी खूब चर्चाएं हो रही थी, खूब बातें हो रही थी, अचानक लोकसभा चुनाव, क्या स्ट्रेटजी है सर चुनाव लड़ने?
अभी देश का चुनाव चल रहा है और हम पॉलिटिकल लोग हैं, जनता के बीच में क्या चर्चा है, कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, कन्नौज के लोग क्या चाहते हैं, उनके इमोशन पे मैंने ये फैसला लिया है।
तो आपने कन्नौज से नॉमिनेशन तो अब कर दिया है, इस बार का चुनाव जो है, अभी तक विकास की बात हो रही थी, रोजगार की बात हो रही थी, लेकिन अचानक मंगलसूत्र 80 बनाम 20 की लड़ाई और ये सारे एजेंडे बन गए हैं, शहजादा बताया जा रहा है आपको, तो ये जिस तरह से चुनाव में लाइन जा रही है उसको किस तरह टैकल करें?
देखिए, बीजेपी के बारे में पूरा देश जानता है और बीजेपी के बारे में हर चैनल के लोग भी जानते हैं कि बीजेपी हमेशा डाइवर्ट करने का काम करती है, डिस्ट्रैक्ट करने का काम करती है, ये कोई भी बात करें अब इनकी मन की बात कोई नहीं सुनना चाहता है। देश की जनता संविधान की बात सुनना चाहती है। जो लोग ये कहते थे वन नेशन वन इलेक्शन वन राशन कार्ड, अब जनता चाहती है कि जो लोग संविधान बदलना चाहते हैं उन्हें जनता बदलना चाहती है। तो इस बार जनता के बीच में जो मुद्दे हैं वो किसान का सवाल है कि आय दोगुनी होगी कि नहीं होगी, नौजवान के हाथ में न नौकरी न रोजगार है और हर चीज़ की महंगाई बढ़ी है। भूल जाएं हम कि महंगाई किसकी बढ़ी है, केवल हम अगर नमक का ही हिसाब किताब लगा दें तो 2014 में नमक की कीमत क्या थी, आज कीमत क्या है, और फिर ये प्रदेश तो वो है जिसने बीजेपी की दो दो बार सरकार बनाई, इन्होंने कोई एक्सप्रेस वे दिया हो तो बता दें हमें, या इन्होंने कोई पहले जो एम्स मिले थे उससे बेहतर कोई एम्स दिया हो, आम लोगों के स्वास्थ्य के लिए अस्पताल दवाई या कोई बेहतर इंतज़ाम किया हो, जो एम्बुलेंस चली थी वो बंद कर दी या ख़राब हो गई या कम चलने लगी, पुलिस के लिए जो रिस्पांस सिस्टम दिया था उस पुलिस को इन्होंने खुली छूट दे दी है, सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ हैं, जो लोग दूसरों का ध्यान हटाना चाहते हैं वो कम से कम अपने आंकड़े और अपनी सरकार के आंकड़े देखें कि NCERV का आंकड़ा ये कहता है कि सबसे ज़्यादा असुरक्षित बेटियां महिलाएं अगर कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में हैं। पिछले 10 साल में 1,00,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली। ये प्रदेश वो है जिसमें 60,00,000 बच्चों के परीक्षा नहीं दे पाए और परीक्षा देकर भी आए तो पेपर लीक हो गया। ऐसे 60,00,000 परिवार जिनके दो सदस्यों का हम जोड़ दें तो हर परिवार में 3 वोट, 3×60,00,000 1,80,00,000, 1,80,00,000 का भाग दे दें 80 लोकसभा से तो 2,25,000 वोट हर लोकसभा में बीजेपी का कम हुआ है। इसलिए बीजेपी घबराई हुई है, इसलिए दाएं बाएं वाली बात कर रही है बीजेपी।
तो आइए चुनावों के बाद बात करते हैं छात्रों की शिक्षा की। एक तरफ JEE के नतीजे जो आए हैं, कामयाब छात्रों की चर्चा है। तेलंगाना के तो 15 छात्रों को 100% मिले हैं। उनसे बातचीत हम लगातार अपने चैनल पर दिखा रहे हैं। अहम है कि जो छात्र बहुत पढ़ाई के बावजूद कामयाब नहीं होते उनको समझना होगा कि ये नतीजे आखिरी कोशिश नहीं होते, आगे बढ़ने के लिए बहुत रास्ते खुलते हैं। बहरहाल मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के रिजल्ट कल घोषित कर दिए गए। इन परीक्षाओं में लगभग 18,00,000 छात्र शामिल हुए थे। शिक्षा विभाग शिक्षा के स्तर को सुधारने और रिजल्ट को बेहतर बनाने के दावे करता है, लेकिन जो परिणाम आए हैं उनसे सवाल खड़े हो रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव KD त्रिपाठी का भी कहना है कि पढ़ाने लिखाने का काम उस तरीके से नहीं हो पा रहा है जिस तरह से होना चाहिए, तो ये समीक्षा की जाए कि इसकी वजह क्या है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पहले अमृतांशी नहीं है तो प्रोफेसर आशुतोष पांडे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी जुड़ने के लिए। आपका क्या आंकलन है सर, क्यों इतनी बड़ी तादाद में हमारे 10वीं के छात्रों ने अच्छा नहीं किया?
देखिए, 10वीं के छात्रों का अच्छा करना या ना करना ये मायने बहुत ज्यादा नहीं रखता। छात्रों ने अपनी बहुत मेहनत की है, पर छात्रों को पढ़ाई का समय बहुत कम मिला। एक्चुअली में परीक्षाएं बहुत जल्दी ले ली गई हैं पिछले वर्ष के मुकाबले, और इस बार जो माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एक परिवर्तन किया था, वो परिवर्तन ये था कि पहले बेस्ट ऑफ 5 में रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता था, 6 विषय में नहीं किया जाता था। इस बार उन्होंने वो समाप्त कर दिया और इसीलिए परसेंटेज जो आपको दिख रहे हैं पिछले साल के मुकाबले वो कम दिख रहे हैं।
बिल्कुल, क्योंकि छात्रों को जो 41% के करीब छात्र जो पास ना हो सके, काफी बेचैनी होगी उनमें, क्योंकि दसवीं के बाद ही आप बारहवीं की तैयारी करते हैं। मैं कुछ शिक्षकों से बात कर रही थी सरकारी, ये भी एक तरह से संदेश जाता है कि देखिए पढ़ाने के लिए कम दिन जाते हैं, अपने काम के लिए ज्यादा चले जाते हैं, शिक्षकों पर और दबाव भी होता है और कार्य भी होते हैं, क्या कुछ ऐसा है? क्योंकि एक तरफ छात्रों को आपने कहा कि पढ़ने का समय नहीं मिला, लेकिन क्या शिक्षकों को भी पढ़ाने का समय नहीं मिला? क्या हालात देख रहे हैं आप?
देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है कि अगर बच्चों को पढ़ने का समय कम मिला है तो ये तो नहीं है, बच्चों को प्रॉपर समय मिला है। लेकिन हाँ, शिक्षक कक्षाओं में कम रह पाए क्योंकि मध्य प्रदेश में ये चुनावी साल रहा, पहले विधानसभा के चुनाव में शिक्षक परेशान हुए, शिक्षकों की ड्यूटी लगी, शिक्षक शाला में कम आ पाए, चुनाव की तैयारी में प्रशासन विभाग लगा रहा, और जहां तक अधिकतर सरकारी कामकाज शिक्षक ही तय करवा पाते हैं, वही संपन्न कराते हैं। समग्र आईडी पोर्टल पे कोई काम हो, एजुकेशन पोर्टल पे कोई काम हो, बीएलओ में बहुत सारे शिक्षक लगे हुए हैं हमारे शिक्षक बंधु, तो शालाओं में उनकी उपस्थिति कम है। दूसरे काम सस्पेंड ना होने के डर से वो उन कामों को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अगर वो ये अतिरिक्त काम ना करें तो सीधे सस्पेंड कर दिया जाता है। तो इस कारण से कक्षाओं में शिक्षकों की उपस्थिति कम रही, विषय शिक्षक भी कम रहे। हमारे यहाँ भर्ती प्रक्रिया भी इतनी लेट है कि 2.5 लाख शिक्षकों के पद खाली, माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, वरिष्ठ शिक्षकों की अभी भी पोस्टिंग बकाया। तो ऐसे में किसी विषय का कोई शिक्षक दूसरे विषय पढ़ा के काम चला रहा है, जिससे कि पढ़ाई प्रभावित हो रही है और जिस कारण ये रिजल्ट के रूप में कमी आपके सामने आई।
बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े आशुतोष पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वाकई में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो मुश्किल छात्र फेस कर रहे हैं, हमारे शिक्षक भी हैं, अतिरिक्त काम जो आ जाता है, मुझे बताया जा रहा है अमृतांशी भी हमारे साथ जुड़ गई। अमृतांशी हमारी सहयोगी हैं, लगातार इस मसले को फॉलो कर रही है। अमृतांशी, बड़ा मुश्किल दौर, क्योंकि इतने चुनाव भी हो रहे हैं, उसका खमियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है।
बिल्कुल, देखिए राज्य शिक्षा केंद्र के एक आदेश के मुताबिक जो कि 2022 में आया था, प्रदेश के 8,000 से भी ज़्यादा जो स्कूल हैं या तो वो शिक्षक विहीन है, या फिर अगर बात की जाए तो ऐसे स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। यानी आप सोचिए कि तमाम जो कक्षाएं हैं वो सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चलाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं शिक्षकों की कमी है और ये कभी जो है वो निकल कर सामने भी लगातार आता है। और इस बार का जो रिजल्ट रहा है, ये जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल ने खुद माना है कि पिछले सालों के मुताबिक इस बार जो है वो रिजल्ट काफी ज्यादा जो है अच्छे प्रदर्शन नहीं रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ऐसे जो छात्र हैं, क्योंकि छात्रों के लिए कहीं ना कहीं जो छात्र पास नहीं हो पाते, जो छात्र फेल हो जाते हैं, उनको यहाँ पर बिल्कुल भी किसी भी तरह की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार रुक जाना नहीं योजना मध्य प्रदेश में चलाती है, जिसके जरिए छात्र दोबारा से एग्जाम दे सकते हैं और एक बार खुद को मौका दे सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे ये निकल कर सामने आता है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही है, क्या सरकारी स्कूल में प्रदर्शन बेहतर नहीं हो पा रहा है? क्योंकि इस बार भी जहां पर भी MPBSE का जो बोर्ड पैटर्न लागू है, प्राइवेट स्कूल ने सरकारी स्कूलों से कई गुना ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है। और पिछले कई सालों में यही जो है वो स्टैटिस्टिक्स रहा है कि सरकारी स्कूल प्रदर्शन में पिछड़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों में शायद शिक्षकों की कमी हो सकती है, सर्व सुविधाएं युक्त सरकारी स्कूल शायद नहीं बन पा रहे हैं, जिस तरह की शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, और इसी कारण बच्चे या फिर छात्र इसको लेकर पिछड़ते भी जा रहे हैं। इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हालांकि ये बात कही है कि वो इसको लेकर आगे देखेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे कि आखिर क्या वजह रही है कि जो सरकारी स्कूल के बच्चे खासतौर से, क्योंकि जो रिजल्ट में पास नहीं हो पाया, जो फेल हो गए, वो ज्यादातर सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं, तो क्या कुछ वजहें रही है, इसका एनालिसिस करने की कोशिश तो की जाएगी। लेकिन वाकई में अगर ऐसा हो रहा है तो ये चिंताजनक स्थिति है। जी
बिल्कुल, चिंताजनक स्थिति है, और सत्ता को, प्रशासन को देखना होगा चुनाव कराएं और शिक्षकों पर ये बोझ ना डालें, क्योंकि उनकी सबसे ज्यादा जरूरत स्कूलों में होती है और ये तमाम प्रदेशों में स्थिति देखने को मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद अमृतांशी आपका जुड़ने के लिए। मायावती के भतीजे बीएसपी के नेता आकाश आनंद ने कहा है कि नौकरियां और महंगाई बड़े मुद्दे हैं। उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि जो लोग सोच रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है वो गलत है। उनसे बात की तनिष्क पंजाबी ने।
स्टार्टेड द लोकसभा कैंपेनिंग, अ लॉट ऑफ पीपल सी इट एज अ डन डील फॉर द बीजेपी, अ लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स से दैट इट इज अ डन डील फॉर द बीजेपी, बट यू आर देयर ऑन द ग्राउंड विथ योर fiery speeches from Nagina, and today also we saw. So what are your, what is the vision and your objective regarding this?
For people who assume that it's a done deal for BJP, I think they are highly misunderstood. They're out of reality touch. If the government has failed to provide jobs, if the government has failed to provide opportunities for the middle class taxpayers, I think it's a big issue that I think the central government has missed on big time. Talking about free ration or free food system, that is also a big challenge. If they think that, you know, by giving free ration or no jobs and then only, you know, giving nice fancy names to new policies every once in a while is going to secure them a parliamentary win, I think they're highly mistaken.